नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वेव्स प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के नए युग के कलाकारों को सशक्त बनाएगा। देश भर में रंग, संगीत और उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। स्वदेशी प्रणाली के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत चौथा देश बना। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर अमरीकी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार। और लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक पुनः संतुलन देख रही है और अब प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक पहलुओं की ओर बढ़ रही है। उन्होंने आज शाम नई दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स को संबोधित किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि वास्तविक वैश्वीकरण एक कथा या एक सत्य के बारे में नहीं बल्कि पृथ्वी के लोगों की विशाल विविधता के बारे में है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कहानी को आकार देने के लिए परंपरा को प्रौद्योगिकी के साथ एक कंटेंट क्रांति ला रहा है।
Waves represents the coming together of cinema, of the digital world, of content revolution, of the IT industry, and of global capability centers in India. Now, on its part, India happens to be a prolific producer, a mass consumer, an enthusiastic innovator, and an active global contributor.
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेव्स प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के नए युग के कलाकारों को सशक्त बनाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि यही वेव्स की मूल अवधारणा है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत की स्थिति बहुत ही अनोखी है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश में 1 अरब से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन है और लोगों ने डिजिटलीकरण को अपनाया है।
World is rapidly changing, and we in India, we have a very unique position. We have a more than billion people who have access to mobile phone. More than 640 million people use smartphones. Our digital rates are one of the lowest in the world, actually the lowest in the world. And people have adopted digitalization the way like a fish takes to water.
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए 1 अरब डॉलर का कोष बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज श्री वैष्णव ने कहा कि पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में स्थापित किया जाएगा।
A $1 billion fund will be created for the creators economy, which will be basically for making sure that all our energetic creators using the latest technologies today, they will be able to get access to capital and hone their skills, upgrade their production levels and reach out to the global market.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये संस्थान मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास स्थापित किया जाएगा। देश भर में रंग, संगीत और उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का दहन आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नंदगांव के लोग भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों के रूप में होली खेलने बरसाने आते हैं। होली को लेकर दिल्लीवासी भी जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। तमिलनाडु में भगवान विष्णु के मंदिरों में तीर्थवारी का आयोजन होता है। गुजरात में भी होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
गुजरात में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। द्वारका में भगवान द्वारकाधीश मंदिर, डाकोर में रणछोड़ राय मंदिर, उत्तर गुजरात में श्यामलाजी मंदिर और राज्य के अन्य प्रमुख श्री कृष्ण मंदिरों में फूल डोल उत्सव और फागणी पुनव उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। द्वारका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने होली के अवसर पर गोमती नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
उत्तराखंड में भी होली का त्योहार पारंपरिक भावना, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उधर पंजाब में आज रोपड़ जिले में स्थित आनंदपुर साहिब में धार्मिक उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ होला मोहल्ला का पर्व शुरू हो गया है। ये 15 मार्च तक चलेगा। नेपाल में भी होली का त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
काठमांडू के बसंतपुर दरबार स्क्वायर में लोगों ने एक दूसरे को रंग बिरंगे अबीर लगाकर होली मनाई। लोग नेपाली वाद्य यंत्रों के साथ लोक संगीत पर स्थानीय बैंड पर नाचते हुए दिखे। असोन की विभिन्न गलियों में संगीत बैंड लाइव संगीत बजा रहे हैं, जिस पर लोग समूहों में नाचने और गाने के लिए एकत्र होते हैं। चीन, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के विदेशी पर्यटक भी हवा में रंगों को देखकर होली के रंग में रंग गए। होली के अवसर पर राष्ट्रपति रामचंद्र पोडोल ने विश्वास व्यक्त किया कि फागु पूर्णिमा देश में सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने में योगदान देगी। नेपाल से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का त्यौहार होली खुशहाली और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा ये त्यौहार सभी के जीवन में नया उत्साह और ऊर्जा लाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली का दहन अहंकार और दुष्ट प्रवृत्तियां जलाने का अवसर है। गोरखपुर में होली का दहन उत्सव समिति के भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्त प्रहलाद के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए सभी को सद्मार्ग पर चलना चाहिए।
होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। आज होली का दहन होने जा रहा है और इस अवसर पर लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव।
मुख्यमंत्री ने लोगों से हजारों वर्षों की सनातन परंपरा का पालन करते हुए सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की। उत्तर रेलवे होली के त्योहार पर सुविधाजनक यात्रा के लिए 400 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो और रेलवे के द्वारा जैसे ईसीआर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, ऐसे अलग अलग जो रेलवे जोन है उनके द्वारा जो ट्रेन चलाई जाएंगी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ वो अलग है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब करीब 26,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया डेवलप किया गया है। इसी प्रकार से आनंद विहार में 5,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग कम टिकटिंग एरिया बनाया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के अंतर्गत दो उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में अनडॉकिंग का बड़ी अहमियत बताई गई है। दोनों उपग्रह जब अंतरिक्ष में थे उनको इसरो द्वारा देश में ही अनुसंधान द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से अलग करना एक अहम योजना है, जिससे आगे काफी मदद मिलेगी। स्वयं चालित यानी ऑटोनमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक की मदद से इसरो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को किसी अलग यान से जोड़ पाएगा और अलग भी कर पाएगा। चंद्र ग्रह को उपग्रह भेजकर वहां से सैंपल लेकर वापस आना हो या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में उतरना हो तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद अब भारत के पास भी ये तकनीक उपलब्ध है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर ऊर्जा पहल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख लाभार्थियों के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पिछले वर्ष फरवरी में शुरू हुई इस पहल के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 4,770 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा करने के अमरीकी प्रस्ताव पर तैयार है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक यूरी उशाकोफ ने कहा है कि चर्चा शांतिपूर्वक हो रही है और रूस बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि ये प्रस्ताव यूक्रेन की सेना के लिए एक अस्थायी लाभ होगा। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध विराम पर चर्चा के लिए अमरीका के अधिकारी मॉस्को में है। संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आज रूस पहुंचे। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने आसानी से तीसरी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया। इस समय पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सातवीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के जी हाओनान और जेंग वेई हान से हो रहा है। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। विजेता टीम शनिवार को फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से खेलेगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने खेलों में आयु संबंधी धोखाधड़ी के विरुद्ध राष्ट्रीय संहिता 2025 के मसौदे पर लोगों और संबंधित पक्षों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। इसका उद्देश्य आयु धोखाधड़ी को कम करना, वास्तविक एथलीटों की रक्षा करना है। ये आयु रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के दोषी पाए जाने वाले एथलीट, कोच और अधिकारियों पर कठोर दंड लागू करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वेव्स प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के नए युग के कलाकारों को सशक्त बनाएगा। देश भर में रंग, संगीत और उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इसरो ने स्पेसएक्स उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। स्वदेशी प्रणाली के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत चौथा देश बना। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर अमरीकी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।